Hare Krishna. Vasu Vaishnava Acharya Vrind ki. Nama Acharya Haridas Thakur ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakti Vrind ki. Gaura Premanande. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga Jaya. So, Srimad Bhagavatam, Skand 9, Adhyay 24. Adhyay ka shirshak hai, Bhagavan Shri Krishna. Aur shlok sankhya hai, 62. Yasmin Satkarna Piyushe. Yas Tirthavare Sakrat. Shrotra Anjali Rupas Prashya Dhunute Karma Vasanam Yasmin Satkarna Piyushe Yas Tirate Vare Sakra Shrotra Anjali Rupas Prashya धुनुते कर्मवासनाम धरा पर कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के इतिहास में सत्कर्णा पीयूषे जो दिव्य एवं शुद्ध कानों की आवश्यकताओं को पूरा करता है यश तीर्थवरे भगवान के दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करके पवित्र स्थानों में रखते हुए सक्रत एक बार ही
मतलब तुरंत
श्रोत्र अंजलि ही दिव्य संदेश का श्रवण करते हुए उपस्पर्श्य स्पर्श करके जिस तरह गंगा जल को धुनुते नष्ट कर देता है कर्म वासनाम सकाम कर्मों के लिए प्रबल इच्छा को अनुवाद शुद्ध हुए दिव्य कानों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं एवं सकाम कर्मों की संलग्नता से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं तात्पर्य जब भक्तगण भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं तो उन्हें तुरंत ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिसके पश्चात वे भौतिकवादी कार्यकलापों में तनिक भी रुचि नहीं रखते इस तरह उन्हें भौतिक जगत से मुक्ति मिल जाती है लगभग हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिकवादी कार्यकलापों में लगा रहता है जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रक्रिया बढ़ती जाती है किंतु भक्त मात्र भगवद्गीता का संदेश सुनकर तथा श्रीमद् भागवत की कथाओं का स्वाद लेकर इतना शुद्ध बन जाता है कि उसे भौतिकवादी कार्यकलापों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती इस समय पश्चिमी देशों में भक्तगण कृष्ण भावना अमृत द्वारा आकृष्ट हो रहे हैं और भौतिकवादी कार्यकलापों से विकृष्ट हो रहे हैं इसलिए लोग इस आंदोलन का विरोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं किंतु यूरोप तथा अमेरिका में भक्तों के कार्यकलापों पर कृत्रिम रोक लगाकर वे इस आंदोलन को रोक नहीं सकते यहां पर श्रोत्रा अंजलि रूप स्पर्श शब्द बताते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से भक्तगण इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उन्हें सांसारिक काम कार्यकलापों का दूषण व्याप्ता नहीं अन्य अभिलाषिता शून्यम आत्मा के लिए भौतिकवादी कार्यकलाप व्यर्थ है अतएव भक्तगण ऐसे कार्यों से मुक्त हो जाते हैं भक्तगण मुक्ति में स्थित रहते हैं ब्रह्म भूहाय कल्पते अतएव उन्हें उनके भौतिक घरों तथा कार्यों में फिर से वापस नहीं बुलाया जा सकता हरे कृष्णा तो इस अध्याय का शीर्षक यह है भगवान श्री कृष्ण तो नौवां स्कंद जो है अब खत्म होने वाला है और दसवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होगा हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं तो इसीलिए यहां पे बता रहे हैं कि शुद्ध हुए दिव्य कानों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं एवं सकाम कर्मों की संलग्नता से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं, तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी जब ये तात्पर्य लिख रहे हैं तो ये उन दिनों की बात है जब आई थिंक 76 की बात है, शायद 76 के आसपास की बात है। तो उन दिनों में अमेरिका में बहुत वो चल रहा था, ब्रेन वॉशिंग के केसेस चल रहे थे, ब्रेन वॉश करते हैं लोग, विरोध कर रहे थे हमारे लड़कों का ब्रेन वॉश कर दिया। और वहां पर गवर्नमेंट भी उस समय ना लोगों को जो है वो सहायता देती थी अगर कोई अपना बच्चे का ब्रेन वॉश कराता है, समझे आप, डीप्रोग्रामिंग, मतलब डीप्रोग्रामिंग, डीप्रोग्रामिंग बोलते थे। हाँ वापिस वापिस, यस यस यस। तो ये तो भटक गया बच्चा, भटक गया। और अगर आप प्रयास कर रहे हैं, जो माँ बाप प्रयास करते हैं उनको वापस लाने की है, उसको डी प्रोग्रामिंग कहते थे, डी प्रोग्रामिंग। बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट और बड़े बड़े लोग थे कि इसका ना इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है, ब्रेन को ऐसे प्रोग्राम कर दिया है कंप्यूटर को, अब इसको हम डी प्रोग्राम कर देंगे, डी प्रोग्रामिंग कहते हैं उसको। उन दिनों की बात है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस समय पश्चिम देशों में भक्तगण कृष्ण भावना अमृत द्वारा आकृष्ट हो रहे हैं और भौतिकवादी कार्यकलापों से विकृष्ट हो रहे हैं, इसलिए लोग इस आंदोलन का विरोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु यूरोप तथा अमेरिका में भक्तों के कार्यकलापों पर कृत्रिम रोक लगाकर वे इस आंदोलन को रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हायर टेस्ट है, हायर टेस्ट, भगवान की कथाओं में रुचि ये हायर टेस्ट है, इससे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है और भगवान भी हमारे प्रति आकर्षित हो जाते हैं, है ना। इतिहास में कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनमें हमें पता लगता है कि सिर्फ भगवान के बारे में सुनने से वो आकर्षित हो गए। रुक्मिणी है ना, रुक्मिणी देवी, उन्होंने कोई देखा थोड़ा था भगवान को कभी, नारद मुनि से बस सुनते थे वो है? फिर ब्राह्मण पत्नियां, आगे जाके आप पढ़ोगे कैसे भगवान एक बार जब जा रहे हैं ग्वाल वालों के साथ, तो ग्वाल वाले कहते हैं भूख लगी है, भूख लगी है, तो कहते हैं यहाँ पे ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहे हैं, उनसे आप मांग लाओ, वो यज्ञ कर रहे हैं बहुत भोग बनाया हुआ है, मांग लाओ। तो जब जाते हैं तो वो तो स्वाहा स्वाहा में मगन है, उनको कुछ नहीं होना है। तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ, जब वापिस आते हैं तो कहते हैं अब तुम दोबारा जाओ पत्नियों के पास जाओ, वो जरूर देंगी, वो सच्ची बात होती है, वो देती क्या है, सारा भोग लेके खुद ही आ जाती है भगवान को खिलाने के लिए। क्योंकि जब वो गोपियां वहां जाती थी, गोपियां जाती थी वो दही और दूध लेके बेचने जाती थी, तो साथ साथ जो क्या करती थी वो भगवान के लीलाओं का वर्णन करती थी, भगवान के बारे में बताती थी, गाती थी। ये तो भूल जाती थी कि दही ले लो दूध ले लो, वो भगवान की ही लीलाएं गाती रहती थी, भगवान के गुणगान करती रहती थी। तो उनको सुन सुन के ही वो ब्राह्मण पत्नियां जो है इतनी आकर्षित हो गई। तो इसीलिए ये हमें समझना है कि जैसे आत्मा के लिए भौतिकवादी कार्यकलाप व्यर्थ हैं, अतएव भक्तगण ऐसे कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। तो जब तक हमें यह समझ नहीं आता कि हम एक जीवात्मा है, जब तक हम ये रियलाइज नहीं करते, ये महसूस नहीं करते, तब तक फिर हमें यह भी समझ नहीं आता कि भौतिकवादी कार्य क्यों बेकार है, है ना। ये तो अच्छा लगता है, इसमें तो मजा आता है। फिर हमें समझ नहीं आती, फिर बात समझ नहीं आती। चैंटिंग कर रहे हैं क्यों, फिर सुनोगे कैसे आप, ना तो क्लास सुनोगे ना चैंटिंग सुनोगे। चैंटिंग को तो सुनना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चैंटिंग को सुनना चाहिए हमें, जप को सुनना चाहिए। हम कीर्तन करते हैं, असल में हमारा जो चैंटिंग है ये कीर्तन और श्रवण दोनों है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेल्फ सेल्फ कीर्तन और सेल्फ श्रवण, सेल्फ है। छोड़ दो आप कैंटी, हमने भी तो छोड़ी हुई है, मेरी भी माला नहीं हुई अभी क्लास के चक्कर में। कल ही तो बताया इन्होंने, थोड़ा तो क्लास पेयर करनी थी, मैंने क्या करता, मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे, सारा दिन है। आ जाओ आप आगे आ जाओ, सुनो क्लास को सुनो, आगे फायदा होगा आपको। आओ कुर्सी ले आओ, कुर्सी ले आओ, आगे ले आओ, यहाँ लगा लो कुर्सी, आ जाओ सामने आओ, सुनो फायदा होगा, तब चैंटिंग में भी मजा आएगा, चैंटिंग का पता लगेगा क्या होता है, आगे बढ़ोगे, नहीं तो ऐसे ही। आओ आओ शाबाश, इधर बैठा लो इनको, इधर बैठा लो, आप इधर आ जाओ, शाबाश बैठो सामने बैठो, आपके दर्शन होंगे। शुद्धात्मा प्योर डिवोटी है, नहीं दे बैठो ना, हमें तो हम भी वैसे बैठे हुए, हम भी मोड़ नहीं सकते, क्या करें, तो तकलीफ है। हाँ तो इसीलिए तो पकड़ा इनको, पुराने हैं तभी तो पकड़ा है कि नहीं, ओल्ड इज गोल्ड है ना, पुराने भक्त जो है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुनो अब बाद में कर लेना ना, क्या फर्क पड़ेगा, छोड़ दो एक फालतू कर लेना, क्या फर्क पड़ेगा, छोड़ दो इसको, छोड़ो ये माला हुई नहीं, फालतू कर लेना एक। शाबाश, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, माधव, माधव तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, हम तो गाते हैं है कि नहीं, शाबाश। तो क्या चर्चा हुई, कुछ समझ आया अभी तक, क्या माधव जी क्या समझ आया, क्या सीन चल रहा है यहां पे, बोलो शाबाश, बहुत याद है आपको, बोलो बोलो, अब तो रोज आते हो ना क्लास में, तो फिर तो है, शाबाश वेरी गुड। भगवान के बारे में जितना सुनो उतना कम होता है, और भगवान के बारे में यहां बता रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनने से हमारा जो भौतिकवादिता के कार्य हैं वो खत्म होते हैं। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो फिर बोलेंगे भी भगवान के बारे में, नहीं तो अंटचंट बोलेंगे, वाचो वेगम, बोलने का वेग है एक है, उसको रोक नहीं पाओगे, अगर उसमें कृष्ण कथा नहीं है तो अंटचंट बोलोगे, कुछ बोलना तो है ही, बोलने से नहीं रह सकते, बोलने के बिना कोई नहीं रह सकता, ये वेग है एक, वेग समझते हो क्या होता है, प्रवाह, हाँ जैसे नदी का वेग होता है, वाचो वेगम, वाचो बोलने का एक वेग होता है ना, तो लोग इसीलिए कई लोग मौन व्रत रखते हैं कि हम वेग को कम कर लेंगे, मौन व्रत रखेंगे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना, वो वैसे लिखना शुरू कर देंगे, लिख के बोलेंगे कुछ करेंगे, ये वेग है, इस वेग को हमें इस्तेमाल करना है, किसमें, कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा के बारे में बोलते रहना है, 24 घंटे बोलते रहना है, तो सुनेंगे तो बोलेंगे ना, सुनेंगे नहीं तो कैसे बोलेंगे, इसलिए सुनना है, श्रवण करना है। और श्रील बाबा जी कह रहे हैं श्रवण करने से क्या होगा, फिर हमें समझ आएगा क्या आत्मा के लिए भौतिकवादी कार्यकलाप व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं, कोई इसका यूज नहीं है, फिर हमें पता लगेगा असली सफलता क्या है, नहीं तो नकली सफलता को ही हम सफलता समझे बैठेंगे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो एक ज्योतिषी ने बताया कि स्वीडन में ये आत्मा पैदा हुई है, जानते थे, एक्यूरेटली जानते थे आत्मा के बारे में, जानते है? ये स्वीडन में आत्मा पैदा हुई है और कुत्ते के रूप में पैदा हुई है, स्वीडन में कुतिया ने अभी अभी 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बच्चे में यही आत्मा गई है, तो यहां समाधि बनी हुई है उनकी, यहां तो समाधि बनी हुई है, नहीं समझ में आई, तो ये जीवन सफल है या असफल है, तो फिर ये तभी समझ आएगा जब ये हमें समझ आएगा कि आत्मा के लिए भौतिकवादी कार्यकलाप व्यर्थ है, आत्मा का क्या लेना देना इनसे, आप अमीर हो गरीब हो, जैसे जब रावण जो है सीता महारानी को लेके जा रहा है, सीता महारानी को लेके जा रहा है तो रास्ते में जटायु मिलता है, गिद्ध, जटायु गिद्ध गिद्ध है वो पक्षी है, लेकिन भक्त है, पक्षी भी भक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है पक्षी भक्त नहीं हो सकते। तो वो देख लेता है सीता महारानी को लेके जा रहा है, वो क्या करता है रावण से युद्ध करता है। अब रावण से युद्ध क्या करेगा, उसके हाथ में तलवार है, बलशाली है, वो क्या करते हैं उसके दोनों पंख काट देते हैं और उसको अधमरा छोड़ के सीता को लेके चले जाते हैं। तो रावण जीत गया ना, जटायु हार गया, जटायु हार गया है, रावण जीत गया, लेकिन असल में तो जटायु जीता, क्योंकि जब भगवान आए भगवान ने उसको सीधा ही अपने धाम में भेज दिया, तो जीत तो जटायु की हुई। लग तो रहा है कि जटायु हार गया बेचारा, रावण जीत गया, रावण कहां जीता। तो इसीलिए ये हमें अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा की जीत ही जीत है, आत्मा की हार हार है, क्या है ना। इसीलिए आत्मा को सक्षम करना है, और आत्मा सक्षम होती है इन्हीं चीजों से, इसी की बात करें। इसीलिए जब हम आत्मा में सक्षम होते हैं, आत्मा को पोषण मिलता है, वो जब सक्षम होती है तो फिर उसको तो चाहिए ही नहीं, व्यर्थ की चीजें चाहिए ही नहीं उसको, सब अननेसेसरी चीजें, इतना बड़ा आडंबर खड़ा किया हुआ हमने, इसकी इसकी जरूरत नहीं है। और इसीलिए फिर जब हायर टेस्ट मिल जाता है, फिर वो व्यक्ति जो है उसको ये टेस्ट बेकार लगता है, को बेकार की चीजें लगती हैं, टाइम वेस्टेज लगता है फिर उसको। भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं ना कि जो अंतर्मुखी लोगों के लिए दिन है, वो बाकी लोगों के लिए क्या है, रात है, और जो उनके लिए रात है वो उनके लिए दिन है। उनको तो वो तो बोर होते हैं, बोर हो जाते हैं ऐसी चीजों से, वो जी जो आजकल चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, बेकार की बातें चल रही हैं, मजाक चल रहे हैं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको नींद आनी शुरू हो जाती है, रात हो जाती है उसके लिए। और जब कोई कथा चल रही होती है, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान हो रहा है, उसमें बिल्कुल सतर्क हो जाता है, जाग जाता है, वो दिन है उसके लिए। दिन का मतलब ये है कि वो जाग जाता है, मतलब जागा रहता है, चाहे रात को भी कथा चल रही हो तो भी जागा रहेगा वो। तो इसीलिए यहां पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि हमें इसका श्रवण करना है। श्रवण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यमुनाचार्य जी भी कह रहे हैं ना, यमुनाचार्य जी एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब से मेरे भगवान के चरणों में मेरा ध्यान लगा है, तब से मुझे रोज नए नए सुख का अनुभव होता है, नया नया रस मिलता है। और जब मुझे कभी विचार आता है भौतिक सुख का, इंद्रिय तृप्ति का, तो मैं थू थू करता हूं, मुझे लगता है क्या विचार आ गया। जो विचार भौतिकवादियों को बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं वो शराब की दुकान में देखो कितनी लाइनें लगी हुई हैं, देखते हो ना लाइनें लगी हुई हैं, ऐसे लगता है फ्री बांट रहे हैं, धक्के मार रहे होते हैं एक दूसरे को, नहीं शराब लेने के लिए। बताओ कोई शराब भी पीने की चीज है, जानवर भी नहीं पीता। और रख के देखो, शराब लेके आओ अपने कुत्ते के आगे रखो, देखो पीता है वो, ट्राई कर लो, ट्राई करके देख लो, आप घोड़े के आगे रखो वो भी नहीं पीता। इतनी बदबू आ रही होती है, गंदी है ना। तो ये क्या है, ये चेतना का विषय है ना, चेतना लो है उनकी, है चेतना, ज्ञान है ज्ञान नहीं, चेतना, सुनो समझो क्या है। जैसे उदाहरण देता हूं आप समझ जाओगे, ध्यान से सुनो, चेतना को हमें विकसित करना है। चेतना विकसित नहीं होगी तो फिर ये थ्योरी रह जाएगी, ये थ्योरी रह जाएगी, ये फिर बातें तो हम बड़ी बड़ी करेंगे वही, पर नाला उत्थे ही बहेगा। सुनिए कथा, सुनिए आपने, पर नाला उत्थे ही बहेगा है, सुनिए, सुनी होगी कई लोगों ने, कई लोग। एक व्यक्ति था, उसके घर के आंगन में दूसरे के घर का गंदा पानी आ रहा था, परनाला मतलब गंदा, वो गंदा पानी, जैसे सफाई नहीं करते गंदा हो जाता ना पानी, सारे घर की सफाई करके तो वो गटर में जाना चाहिए ना, वो क्या उसका, उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि उसके घर का पानी जो है वो वहां गिरता था, तो वो बेचारा परेशान था, वो गया उसके पास, कहता है सर ये तो गंदा पानी हमारे आंगन में आगे आगे घर के आगे आगे गिरता है। कहता है ओए परनाला उत्थे बहेगा, तू जो करना कर ले। दादा होते ना पंजाबी बाग में तो रह रहे हो, मैं पंजाबी तो जानते हो, और तू जो करना कर ले परनाला उत्थे ही बहेगा। दादा समझते हो ना, दादा टाइप था वो, डरता नहीं था किससे। अब वो बेचारा बड़ा भला मानस था, वो लड़ाई में विश्वास ही रखता था, वो पंचायत में चला गया और पंचायत में जाके बताया ये समस्या है। पंचों ने बुलाया उसको, उनको कहा कि ये क्या बात हुई, तेरे घर का पानी गंदा वो भी उसके घर के आगे गिरे, ये कहां की इंसानियत है भाई, अपने गंद तू दूसरे के घर में डाल रहा है, ये क्या इंसानियत हुई। तो ये पंचों ने सबने फैसला किया है कि उसका या तो मुंह बंद कर दे और या उसका मुंह कहीं और खोल, इसके घर के आंगन में नहीं गिरना चाहिए। तो क्या जवाब देता है दादा, ओ पंचा दा फैसला सार मथे पर नाला उत्थे ही बहेगा। पंजाबी समझ आ गई ना। तो जब तक हम चेतना को, कॉन्शियसनेस को, चेतना को एलिवेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बरनाला अपने आप ही वहीं बहेगा। सुन लेंगे हाँ जी बड़ी अच्छी, वो बड़ा अच्छा प्रवचन सी जी, टच हो गए जी, टच हो गए, बड़ा अच्छा गल कही, बरनाला उत्थे बहेगा। हमारे जीवन में कोई चेंज नहीं आया, वहीं के वैसे ही, वैसा चल रहा सब। चेतना को हमें विकसित करना है, चेतना को विकसित करने के लिए ये सारी चीजें हैं, भगवान के नामों का जब ध्यान पूर्वक करना है, एब्जॉर्ब होना है इसमें। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, जैसे सुअर है, सुअर पशु की चेतना जो है मनुष्य से लो होती है ना, सबसे लो होती है ये पेड़ों की, ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी लोएस्ट चेतना होती है, आत्मा इनमें भी है लेकिन आत्मा का जो प्रकाश है वो बहुत लो है, सबसे कम वाट का बल्ब है, बहुत लो है। इसके कारण इनको काट भी दो कोई रोने की आवाज ही नहीं आती। ऐसे पुराने जमाने में ऐसे समझा जाता था कि इनमें जैसे जान ही नहीं है, मतलब शास्त्रों में तो लिखा है लेकिन वहां कहते हैं जगदीश चंद्र एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने खोज निकाला कि इनमें भी जान होती है। मॉडर्न पढ़ाई बता रहा हूं, शास्त्रों में तो लिखा है कि आपको हरे पेड़ की अगर आप हत्या करते हो तो बहुत बड़ी ये मर्डर है, मर्डर के समान माना गया है। ग्रीन पेड़ जो हो, हरा भरा पेड़ है उसको काट दिया, ये मर्डर के समान माना गया शास्त्रों के मुताबिक। तो उनको तो पता है इसमें आत्मा, तभी तो मर्डर कह रहे हैं। लेकिन इनका जो कॉन्शियसनेस का जो फैलाव है वो होता है सुप्त, सुप्त है ना। और जो पशुओं में होती है वो थोड़ी सी जागी होती है, इसलिए उनको आप नहीं ऐसे कह सकते काटोगे मारोगे तो वो तो रोएंगे चिल्लाएंगे भागेंगे, है ना। और सबसे ज्यादा प्रफुल्लित जो होती है वो होती है मनुष्य में। लेकिन मनुष्य में एक और फैसिलिटी है कि अगर वो चाहे तो अपनी चेतना को पूर्ण ब्लूम कर सकता है। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हमारी चेतना ऐसी होती है कली की तरह, और अगर हम चाहें भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा जाने से पहले हम अपनी चेतना को ऐसे ब्लूम कर सकते हैं पूरा प्रफुल्लित, समझ गया। तो चेतना के कारण जो सुअर है, बताओ सुअर है वो तो मल खाता है, जो हम त्यागते हैं वो हलवे की तरह खाता है, उसको हलवा की तरह मजा आता है, हलवा खाता है वो। आपका कभी मन करता है सुअर को देख के जरा मैं भी टेस्ट कर लूं कितना मजे से खा रहा है, चेतना का तो फर्क है। कभी मन ही नहीं करता, कभी एक्सपेरिमेंट करने का भी मन नहीं करता, नहीं या करता है, क्योंकि भगवान ने चेतना पहले से ही डेवलप दी हुई है ना। अब इसको और प्रफुल्लित करना है, जब इस चेतना में हम पहुंच जाएंगे जैसे यमुनाचार्य जी पहुंच गए हैं, तो फिर हमें ये जो चीजें हमें अच्छी लगती है ना उसको भी हम थू थू करेंगे, ठीक है माधव जी। चेतना का विकास करना है, एब्जॉर्ब होना है हमें, भगवान के नामों का जप जो है ये तो हमारे आंदोलन का नाम ही है, हरे कृष्णा आंदोलन। इसमें हमें तीनों चीजों को मिलान करना है, बोलना है, सुनना है, मन को लगाना है, आत्मा को लगाना है इसमें पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब होकर। जब आप जप करोगे फिर देखोगे कि नाम बोलेंगे आपके साथ, नाम तो जीवित है, डेड थोड़ा है कोई, ये डेड वॉइस थोड़ा है, ये तो लिविंग है, भगवान है ये, उनका दिल धड़क रहा है ना, वो सुनाई देगी आपको। भगवान भगवान है ये, भगवान और भगवान के नाम एक ही वस्तु है, कोई दो वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु है। तब पता लगेगा जब हम एब्जॉर्ब होंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी चेतना के कारण क्या है, चेतना का विकास करना है, इसलिए प्रार्थना करनी है भगवान से, हमें उठाओ उठाओ हमें। इसलिए तो ऐसे कहते हैं उठा लो भगवान उठा लो, जैसे बच्चा नहीं होता माँ को बाप को कहता ऐसे ऐसे करता है, ऐसे 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 उठा लेते हैं ना माँ बाप, तो ऐसे ही भगवान को कहना है उठा लो हमें, गिर गए हम इस सागर में, गिर गए हैं भव सागर में, गिर गए हम, उठाओ। प्रार्थना के मूड में हम्बल दैन्य भाव से हम जब जप करेंगे, बहुत पावरफुल है जप ही तो है सब कुछ। सारे कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए किए ताकि हम ध्यान पूर्वक जप कर सके। बताए आपको सारे जो चीजें बनाई है ना प्रभुपाद जी ने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें समझ लो, मंदिर आरती सब, इसलिए कि हम ध्यान पूर्वक एब्जॉर्ब होकर जप कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यही, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, इसी को हम ऐसे मतलब टाइम ही नहीं है इसके लिए हमारे पास, है ना। जब टाइम नहीं होगा तो कनेक्शन कैसे बनेगा, टाइम ही नहीं। आजकल सबसे बड़ी बीमारी है ये, किस चीज के लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए रिलेशनशिप भी खराब होते जा रहे हैं। टाइम ही नहीं, रिलेशनशिप के लिए टाइम देना पड़ता है ना। नहीं, कोई भी रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। टाइम है ही नहीं, टाइम पता नहीं कहाँ, 24 घंटे सबके पास है, टाइम है ही नहीं आजकल, कहां चला गया पता नहीं टाइम। 24 घंटे पुराने जमाने में होते थे, 24 घंटे आज है लोगों के पास, लेकिन उनके पास तो बहुत टाइम होता था। स्वेटर बुनती थी औरतें, हमें याद है जब हम छोटे थे तो तंदूर हुआ करते थे, तंदूर समझते ना, तंदूर वो सारी औरतें जो है अपने घर से लेके आती थी, बालन बालन वो बालते अपना लकड़ियां या कोई ले आया अपने अपने, फिर डाल दिए सारे मिलके बैठ के, एक ही तंदूर से सारे घरों की रोटियां सिकती थी, चार पांच छह घरों की, और वो सोशलाइजेशन भी होता था, सब टाइम ही टाइम होता था। आजकल टाइम ही नहीं है, नो टाइम। तो अगर आप भगवान के लिए समय निकालोगे तो भगवान आपके लिए समय निकालेंगे ना। फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैं बजामि हम, और हम भी अगर चार चार काम इकट्ठे करेंगे तो भगवान भी चार चार दस दस लोगों के साथ ही देखेंगे आपको भी। वन टू वन अगर हो भगवान के साथ साक्षात्कार तो मजा आएगा ना। या भीड़ है और उसमें हमें भी भगवान ने दर्शन दे दिए तो क्या हुआ, बात तो नहीं कर पाए ना दिल की। वन टू वन होना चाहिए ना। तो अगर आप वन टू वन हो गए तो भगवान भी वन टू वन होंगे। आप दस काम करते हुए जब भी कर रहे हो, भगवान भी ऐसे करेंगे। है ना। तो ये चीजें ही हैं हमें जो हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जाएंगी, ये सारी चीजें हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि फिर हमें समझ आए कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा की आत्मा के लिए ये भौतिकवादी कार्यकलाप व्यर्थ हैं, व्यर्थ है ये, हमारे लिए नहीं है ये। हम फंसे हुए हैं। जैसे मान लो कोई जेल में है, कोई जेल में है और उससे वो निकलने के लिए कुछ भी प्रयास करे, क्या है, सस्ता है। आप देखो जेल में कई बार लोग पता है कैसे कैसे निकलते हैं, वो जो रास्ता होता है ना टॉयलेट वाला, टॉयलेट वाला, टॉयलेट के रास्ते से निकल जाते हैं जेल से बाहर। तो कुछ भी कष्ट हो इस संसार से निकलने के लिए, उसे हमें वेलकम है, निकल रहे हैं ना हम। और इस संसार में फंसाने वाली हैं ये सारी चीजें, तो भौतिक चीजें तो सारी, आजकल तो उसी का जमाना है फंसाने वाली चीजों का, और फंसो और फंसो, उसी को सक्सेस मानते हैं। जितना ज्यादा जो फंसा हुआ है उतना ज्यादा उसको सक्सेसफुल मानते हैं। आपका कोई और प्रश्न है तो बताइए, बाकी तो आप जानते हैं सारी चीजें। समझ आया कुछ नहीं? हाँ, इसी से शुद्ध 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 मतलब शुद्ध होना है, भगवान के नामों का जप करके शुद्ध होना है, तभी तो पता लगेगा। नाम रूप गुण लीलाएं है ना, नामों का श्रवण करके शुद्ध करना है कानों को, तभी भगवान की लीलाएं गुण हमें समझ आएंगे, नहीं तो समझ नहीं आएंगे। कानों में अगर अशुद्ध वार्ताएं हमारी घूम रही हैं तो वहां भी तो अशुद्धता ही नजर आएगी। फिर भगवान भी लगे, भगवान भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है ना, वही चीज हमें, वही प्रोजेक्ट करेंगे, हम मेटीरियल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट करेंगे। जब हम भगवान को समझे ही नहीं भगवान कौन है, भगवान को तो कुछ इस मेटीरियल वर्ल्ड से लेना देना ही नहीं है, वो क्यों ऐसे पचड़ों में पड़ेंगे। इसीलिए तो ये नाइन्थ कैंटो में इसीलिए तो बताया है, सारा नाइन्थ कैंटो पढ़ने के बाद हमें टेंथ कैंटो में जाना है। पढ़ने के बाद मतलब इसको समझने के बाद, इसको अपनाने के बाद, तभी हमें समझ आएंगी लीलाएं भगवान की जो आगे, अब भगवान का जन्म, भगवान की लीलाएं आगे जो है सभी समझ आएंगी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एमम यो वेति तत्वता, तत्वता तत्व से जो जानता है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, इस लोक के हमारी तरह नहीं है, वो फिर त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽजो, वो फिर नहीं आता। तो नाम से हमें शुद्ध करना है इनको, कानों को हमें नाम लेके सुनना है, इसीलिए तो मैं कह रहा था सुनना है, कान हमारे सुन होंगे जब हम नामों को सुनेंगे, भगवान की ये श्रीमद् भागवतम भगवद गीता उपदेश सुनेंगे, ये भी शुद्ध करता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रभुपाद जी ने कहा आउट ऑफ ऑल द सर्विसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस इज चैंटिंग यूर 16 राउंड्स अटेंटिवली डेली, अटेंटिवली एंड डेली। ये नहीं कि आज चार माला रहेगी कल कर लेंगे जी, कल 20 कर लेंगे, आज 12 रह गई माला, 16 माला का संकल्प किया है, कल 20 कर लेंगे है? जैसे आज हमने 4 रोटी खानी थी, 2 खाई है, कल 6 खा लेंगे, और अगर मान लो कल भी नहीं खा पाए 6 तो परसों 12 खा लेंगे, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट ठीक है? तो मुसीबत वाली काम कर रहे हो, अपना पेट को खराब करने वाली रोज। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा 16 मिनिमम एवरी डे अटेंटिवली, जितनी भी सर्विसेज दी हैं श्रील प्रभुपाद जी ने हमें, कुछ भी दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है, अगर ये नहीं हम करेंगे तो बाकी हम समझ नहीं पाएंगे, फिर बाकी भी वो सर्विसेज नहीं रहेंगी, फिर वो नौकरी हो जाएगी, फिर हमारी भावना वो रहेगी नहीं, ट्रांसेंडेंटल नहीं होंगे हम, भक्ति नहीं करेंगे, फिर तो है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे हम करेंगे। यस, तो जरूरी है, इसीलिए तो प्रचार है, भक्त बनाना है ना आपको, इसीलिए तो प्रचार है, चलो किताबें बांटनी है, संकीर्तन करना है, जबरदस्ती उनके कानों में डालना है भगवान का नाम, जबरदस्ती किताब देनी है उनको बाय हुक और बाय क्रूक, भक्त बनाना है ना, हमारा कार्य है ना ये, भक्त नहीं बनेंगे तो उनको फिर क्या समझ आएगा। ठीक बात है, सच बात है ना, भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं में से काम कर्मों के संलग्नता से तुरंत मुक्त हो जाते हैं, भक्तगण दूसरे नहीं, जो ईर्ष्या कर रहा है भगवान से वो क्या सुनेगा। शिशुपाल था, कितना ईर्ष्यालु था, सारे असेंबली में सब लोग उनका गुणगान कर रहे हैं भगवान का, और वो कह रहे हैं कि ये देखो ये सारा ये नकुल जो है सब, ये इनको अक्ल ही नहीं है, इनकी इसकी तो कोई जात पात नहीं है, गवाला है ये है, इसको अग्रज पूजा के लिए आगे कर दिया, देखो इसको भगवान बना रहे हैं, ये सब पागल हो गए, ईर्ष्या करता था ना। तो ये शालू लोग क्या समझेंगे, ये शालू लोग कृष्ण को क्या समझेंगे, वो तो समझेंगे क्या है ये कृष्ण, क्या है कोई होगा ऐतिहासिक पुरुष है या अभी आया था 5000 वर्ष पहले आया था, कई तो उनके कैरेक्टर पे भी डालेंगे कि क्या कैरेक्टर है, दूसरों की औरतों के साथ रात रात को नाचता था ये, क्या समझाओगे उनको आप। तो पहले भक्त बनाना है उनको, भक्त कैसे बनाना है, उनको भगवान का नाम सुना के, उनको प्रसाद खिला के, उनको किताब दे के, है ना, श्रील प्रभुपाद जी की किताबें दे के। इसलिए तो बांटनी है किताबें, जितनी किताबें हम बांटेंगे उतना हमारा जो है आंदोलन फैलने के चांसेस हो जाएंगे। ये बीज है, एक तरह से बीज डाल रहे हो आप, भक्ति के बीज डाल रहे हो। ये किताबें जितनी बाहर आप दे रहे हो ना, ये वेस्ट नहीं जाने वाली, 101% वेस्ट नहीं जाने वाली है। जहां भी ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहां पे भी किताबें ज्यादा बाहर जा रही हैं, वहां पे भक्त बन रहे हैं खूब। तो फिर जो सुनेंगे तब उनके फिर भौतिकवाद आ जाएगी ना एकदम, थोड़ा पहले तो भक्त बनाना है उनको। भक्त बनाने का मतलब यह है कि वो उनको चैंटिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए उनका आकर्षण पैदा करना है। जो चीजें वो ग्रहण कर सकते हैं, ईर्ष्या होते हुए भी जो चीजें ग्रहण कर सकते हैं वो देनी है। जैसे मान लो कोई भगवान से ईर्ष्या करता भी है, लेकिन उसको अगर अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद दो खा लेगा वो, सच्ची बात है नहीं? कितनी भी ईर्ष्या करता हो, कितना भी कुछ कहता हो, नहीं अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद उसको दो, वो जी वो खा लेगा। तो उसने प्रसाद खा लिया तो छोड़ेगा थोड़ा वो प्रसाद, भगवान कृष्ण में और भगवान के प्रसाद में क्या अंतर है, भगवान ले लिया उसने, है ना। तो यही कला है, भक्त बनाना है हमें, प्रचार। इसलिए प्रचारक भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, पता है आपको सर्वज्ञ प्रभु क्या कह रहे हैं, क्या कहते हो आप? प्रचारक जो है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। कहां कह रहे हैं भगवान ये बात? 18वें अध्याय में भगवद गीता में। हाँ, उससे प्रिय ना कभी कोई हुआ है ना होगा, जो ये भगवद गीता का रहस्य बताता है। इसलिए भगवद गीता यथारूप लोगों को देनी है। भगवद गीता यथारूप पढ़ के लोग भक्त बनेंगे, कोई भगवद गीता पढ़ के नहीं भक्त बनेंगे। कोई भी भगवद गीता दे दो वो तो अपराध करोगे आप। अगर आप गोरखपुर की भगवद गीता किसी को देते हो तो आप अपराध कर रहे हो। नहीं समझ में आई बात? कैसे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तात्पर्य नहीं आता। और कौन बताना चाहता है? चलो ठीक है, ओके। और कोई और इसको और? हाँ हाँ, फिर हाँ। अब भगवान 67 श्लोक में खुद कह रहे हैं कि ये वाला ज्ञान जो है ईर्ष्या, जो द्वेष करते हैं मेरे से, जो नियमों का पालन नहीं करते, जो भक्त नहीं है, उनको नहीं देना चाहिए। तो आप तो दे रहे हो फिर। श्री प्रभुपाद जी तो एक खास एम्पावर्ड व्यक्ति हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, है ना। तो वो वाली भगवद गीता यथारूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वो। तो यथारूप में जो आप प्रस्तुत कर रहे हो, तो यथारूप में प्रस्तुत करने के प्रयास में ही आपकी मुक्ति हो गई, ये समझना है। तो यथारूप को प्रस्तुत कर रहे हैं ना, यथारूप एज इट इज जो भगवान ने कहा है उसको आप प्रस्तुत कर रहे हो, उसको दे रहे हो। मान लो ये यथारूप है भगवद गीता, यथारूप एज इट इज, आप एज इट इज उसको देने का प्रयास कर रहे हो, बस यही काफी है। ये हो गया काम, इससे भगवान खुश हो गए। आप प्रयास कर रहे हो ना उसको देने का, बस खुश हो गए। वो आगे काम जो है वो प्रभुपाद जी करेंगे, भगवान करेंगे। आपका उसको यथारूप दे रहे हो ना, आप कोई ऐसा वैसा नहीं दे रहे ना, इस कलयुग में उसको यथारूप दे रहे हो आप। बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है वो, इसलिए हमें भक्त बनाने हैं। तभी तो फिर वो सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तभी तो छोड़ेंगे चीजों को, एकदम थोड़ा छोड़ेंगे। शुरू शुरू में तो सब करेंगे, वो सब काम करेंगे, हमें कुछ कहना भी नहीं है उनको। तो उनकी चेतना ऊपर बढ़ेगी, अपने आप छोड़ देंगे। जब उनको हायर टेस्ट मिलेगा, अपने आप छोड़ देंगे धीरे धीरे। ठीक है, और हाँ जी, वही है ना, क्योंकि हम ये पकड़ नहीं पा रहे कि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए, हमें मिराज नहीं चाहिए, ये पकड़ नहीं पाए, तत्व नहीं पकड़ पाए ना, तत्व नहीं पकड़ पाए कि वो जो रेगिस्तान में हमें नजर आ रहा है, जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास टाइम नहीं है, वो तो लिशकारा है, सूरज का पानी तो है नहीं, पागल हुए फिरे हैं हम। तो कब प्यास बुझेगी आपकी? जब आप भाग ही रहे हो लिशकारे के पीछे, पानी है ही नहीं, तो प्यास कैसे बुझेगी? जैसे एक पशु होता है ऐसे रेगिस्तान में भागता है, मर जाता है बेचारा प्यासा, ऐसे हमारा हाल होगा, प्यासे ही मर जाएंगे। तो ये समझना है ना, ये चीज, ये तो है व्यर्थ है, ये तो हमें समझना है, ये व्यर्थ है, ये हमारे लिए कोई मेटीरियल लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं है। अगर इसका पर्पज होता तो छह गोस्वामी जो हैं, रूप गोस्वामी, जिन्होंने युक्त वैराग्य की व्याख्या की है, युक्त वैराग्य क्या होता है? युक्त वैराग्य तो रूप गोस्वामी क्यों रिनाउंस करके आ गए? वो सारी नाव भरी हुई थी उनकी, सोने की, अशरफियों की, और पेड़ के नीचे आके रहते थे वृंदावन में। उन्होंने लिखा है युक्त वैराग्य और कर क्या रहे हैं? रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य का दिया है ना हमें कॉन्सेप्ट, जानते हैं ना? नहीं, इन्होंने हाँ बोला ना, युक्त वैराग्य यही है ना, युक्त वैराग्य उच्चते है ना, है ना ये? तो फिर वो छोड़ छाड़ क्यों के आ गए भाई? सारी अशरफियां साथ लेके आते वृंदावन में, बढ़िया सी कोठी बनाते एसी वाली साथ में, भजन करने का जिसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती धूप में और गर्मी में, जैसे आजकल के लोग बना रहे हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य तो है ये, ठीक बात है ना? ऐसे ऐसे गर्दन ला रहे हैं ये तो भैया, तुम्हारे पास पैसा है, भगवान की सेवा में लगा दिया, भगवान के दाम में कोठी बना दी अपनी बढ़िया सी, जो युक्त वैराग्य नहीं है ये? क्योंकि युक्त, हाँ शाबाश, वेरी गुड, युक्त वैराग्य वैराग्य से ऊपर की बात है, ये समझना चाहिए। युक्त वैराग्य वैराग्य से नीचे की बात नहीं है, हम वैराग्य से नीचे ले लेते हैं युक्त वैराग्य को, तो बहुत वैराग्य तो आया नहीं, युक्त वैराग्य कहां से आएगा? वैराग्य ही नहीं आया अभी तो। युक्त वैराग्य जो है ना पीएचडी है, आगे की चीज है, पहले वैराग आएगा फिर युक्त वैराग्य आएगा, ये नहीं पहले युक्त वैराग्य आएगा फिर वैराग्य आएगा, यहां उल्टा चल रहा है, नहीं उल्टा समझ लेते हैं अपनी, आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। पहले वैराग आना चाहिए, भक्ति जब आती है तो वैराग आता है ऑटोमेटिक, यहां पे ये तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना यहां पे, कि उसको समझ आ जाता है कि ये चीजें जो हैं ये बेकार की चीजें हैं, मैं क्यों भाग रहा हूं मृग तृष्णा के पीछे, इसमें कुछ तत्व ही नहीं है, ये तो कह रहे हैं। आत्मा के लिए भौतिकवादी कार्यकलाप व्यर्थ हैं, ये समझ आ जाता है, ये व्यर्थ है, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे। जाहे विधि राखे राय ताहे विधि रहिए, झोंपड़ी में वास दे चाहे महलों में वास दे, झोंपड़ी में रखे बहुत अच्छा, महलों में रखे बहुत अच्छा, कोई अंतर ही नहीं है। यहां तो अंतर पड़ता है, महलों में रहना चाहिए जी, एसी होना चाहिए, गाड़ी बढ़िया, तो फिर बैराग कहां, फिर क्या भक्ति क्या कर रहे हैं, आत्मा का पता ही नहीं है आजकल, क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं है ना, कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं है कोई, कोई ऐसे, ये तो एक ही इस्कॉन ही ऐसी संस्था है जहां ऐसे क्लासेस होती हैं, और कहां होती हैं, बाकी तो गुरुजी गुरुजी, गाड़ी के पीछे लिखो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी कहेंगे ओ भैया ये क्या फोन लेके घूम रहा है, एप्पल का फोन ले अगर कुछ करना चाहता है तो, नहीं समझ आ रही, या समोसे खाया करो, समोसे खाया कभी, समोसे खाया करो तब तुम्हारा भाग्य बदलेगा, ऐसे लोग पागल घूम रहे हैं यहां पे, ऐसे लोग नहीं है, लाखों लोग उनके पीछे लगे हुए हैं जिनके लिए ऊपर हम हंस रहे हैं, कितने पागल हैं। तो आपकी जिम्मेवारी है ना, आप दया करो ना, दया भावना नहीं है, जाने दो उनको नरक में, जाने देना, हम तो बच गए, जाने दो हमें क्या, नहीं फिर तो प्रभु जी ये समझना है, मेटीरियल क्या फर्क पड़ता है, जो चीज आपको अभी सुख दे रही है वो दुख देगी, सुख और दुख मिले हुए हैं। आज आपको गीजर का पानी बड़ा अच्छा लग रहा है, मई में पूछूंगा आपसे आके, प्रभु जी अभी गीजर के पानी से नहीं ना आ रहे। नहीं नहीं प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो, क्यों तो बड़ा सुख दे रहा था, गीजर लगाया था इतने पैसे खर्च करके, और जब गीजर का पानी आप डालते थे हा हा हू 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 हा हा हू मजा आता था, अब नहीं मजा आ रहा। अब गर्म पानी वही वाला मई के महीने में डालूंगा ना सड़ता बलता तो मेरे को जेल में डाल दोगे, कैसे सड़ा जला दिया जी इन्होंने। ये है मेटीरियल लाइफ, अज्ञानता, घोर अज्ञानता। जैसे पशु को अज्ञानी है कि ये मैं इसके पीछे भाग रहा हूं, इसमें है क्या। इसलिए भक्तों का संग करना है, भक्तों से दोस्ती करो। हम आते हैं मंदिर में आते हैं, लेकिन दोस्ती हमारी लोगों से दूसरे लोगों से होती है, रिश्तेदारी दूसरे लोगों की है। जब शादी करते हैं तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं, भक्तों को नहीं बुलाते। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई बात। पैसा जो है इकट्ठा किया है शादी में खर्च करने के लिए, जन्माष्टमी में खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है जी, बड़ा टाइट है हाथ, बड़ा टाइट है। नहीं समझ आ रही ना बातें, जब ये समझ में आएंगी ना बातें तो सब कुछ समझ आएगा। अच्छा, अचीव करने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। आपको पता है कल कितने जो भक्त होता है वो सोचता है मेरा ये आखिरी दिन है। जो भक्त होता है ना उसकी ये कैलकुलेशन है, ये मेरा आखिरी दिन है, बस इस हिसाब से जीता है। और जो अभक्त होता है वो ऐसे प्लानिंग करता रहता है, 10 साल मैं ये करूंगा, 20 साल फिर ये करूंगा, फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ूंगा। अच्छा जुड़ जाना भैया, तुम पता नहीं कहां होगे उस वक्त, कौन सी योनि में होगे। इमरजेंसी है ये, इमीडिएट, आज मेरा आखिरी दिन है, आज ही कृष्णा कॉन्शियस बनना है मुझे पूरा, इमरजेंसी। इतना टाइम बीत गया, 5 साल की उम्र में कहा है कि हमें लग जाना चाहिए, कितना बूढ़ा हो गया मैं तो। ये होना चाहिए भावना, इससे क्या फर्क पड़ता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस को थोड़ा कोई मैटर की, भगवान तो शास्त्र है, चिंता मनी प्रकर सद मसु लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं, आपकी क्या लक्ष्मी करेगी वहां पे, टूटी पुट्टी लक्ष्मी, ये तो चलती भी नहीं है वहां पे। और ये नहीं चलते नोट कागज, इसको कागज समझा जाता है, जिनको आप नोट समझते हो वो कागज समझे, कागज के टुकड़े ले आए हो, ये क्या है। वहां तो साक्षात लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई है, उसको क्या चाहिए तुम्हारे से। हम पता नहीं कहां पे बैठे हुए हैं, उनको जो चाहिए वो आज ही दे सकते हो, सबके पास है, वो सबके पास है, सबके पास दे सकते हो आप। भगवान को आपका प्रेम चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्तिया भक्ति प्रेम चाहिए, और थोड़ा कुछ चाहिए, पत्ता ही दे दो इस प्रेम भावना से, दे दो पत्ता लागे, नहीं है कुछ तो मान लो, अगर है तो और आगे दे दो। नहीं जी वो तो अपने शादी के लिए रखा हो, बेटी की शादी, आजकल शादी नहीं होती, पैसा तो लगाना पड़ता है। जब भगवान देगा तो जन्माष्टमी में हम भी देंगे, हम भी कलश करेंगे, भगवान ने दिया ही नहीं। ये समझो, ये कैलकुलेशन समझो, तब आगे बढ़ जाओगे। भगवान प्रैक्टिकल चाहते हैं, थ्योरेटिकल नहीं है भगवान, भगवान कोई मूर्ख नहीं है। आप आए यहां पे, अपना निकाला बैग, बैग के अंदर से देखा, ऐसे किया कि भगवान को नजर तो नहीं आ रहा, देखा हजार हजार के नोट पीछे, 1 50 का नोट निकाला, बंद किया, डाल दिया। ओ भगवान को सब पता है, पीछे भी देख रहे हैं वो 50 हजार जो रख लिए हैं ना वो देख रहे हैं भगवान, भगवान से कोई छुपा नहीं है, उनको पता है कितने परसेंट दे रहा है ये, 50 हजार में से 50 रुपया दिया है या 100 में से 50 दिया है, भगवान सब जानते हैं, उनको कैलकुलेशन आती है, मैथमेटिक्स आता है, ये 1% दिया है, आधा परसेंट दिया है या 50% दिया है, सब आता है। आप बुद्धू नहीं बना सकते भगवान को, इसीलिए भगवान ने भगवदगीता ने साफ कह दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैं भजामि हम, जिस भावना से जिस प्रतिशत में मेरे पास वो आता है उसी प्रतिशत में उसी भावना से मैं उसके पास जाता हूं। चलाक है भगवान, और इसलिए अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान के हो जाओगे, तो आप भी चलाक हो जाओगे। जेई जन कृष्ण भजे सेई बड़ा चतुर, चतुर हो जाओगे, फिर कोई ठग नहीं पाएगा आपको, फिर गुरुजी कोई नहीं ठग पाएगा आपको, कोई भी आ जाए, गुरुजी पुरुजी टुरुजी जो भी आ जाए, कोई नहीं ठग पाएगा आपको, कृष्ण भक्त को कोई नहीं ठग सकता, चतुर है ना भगवान है उनके साथ। अर्जुन को कोई ठग पाया क्या, और आप आया क्या, कुछ भी सैनी नहीं थी बेचारे के पास है? उनके पास 11 अक्षौनी सेना थी, इनके पास बेचारे के पास 7 अक्षौनी सेना थी, 7 और 11। अक्षौनी सेना बहुत बड़ी होती है, लाखों लाखों उसमें सैनिक होते हैं, हाथी, कितना बड़ी सेना होती है, बहुत बड़ी। अक्षौनी का मतलब बहुत बड़ा एक सेना, तो 4 अक्षौनी का फर्क बहुत फर्क है। भगवान कृष्ण ने मार दिया सबको, मरा दिया, अर्जुन का सिंहासन पर बैठा दिया, तो फिर क्या डर, ये है जीत। भगवान आखिर में भगवत्ता में कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र धनुर्धर पार्था तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव मतिर ममा, है ना, नीति नीति भी, हाँ वहां पे सारे ऐश्वर्य है, विजय है, नीति है, सब कुछ है। लूजर नहीं रहोगे आप, इन चक्रों में मत पड़ो, भगवान चाहेंगे कुछ भी दे सकते हैं आपको, भगवान चाहेंगे कुछ भी कभी भी दे सकते हैं। रातों रात आपको सुदामा की तरह आप घर जाओ तो आपकी झोपड़ी है ही नहीं और आलिशान महल खड़ा हुआ है, ये कहानियां थोड़ा है, सच्ची बातें हैं। हम सुदामा तो बने, सुदामा बनने को तैयार नहीं है, सुदामा की कोठी चाहिए हमें, ये चक्कर, सुदामा की भावना नहीं करना हमने डिवेलप, कोठी जरूर चाहिए हमें, क्या से काम चलेगा। प्रभुपाद जी हमें सुदामा बना रहे हैं, भाव, ये वाले भाव, ताकि सब कुछ दे देंगे भगवान। भगवान कोई थोड़ा कलयुग में भगवान है नहीं, या उनकी अब मेंटेलिटी बदल गई है, अब उस तरह का भाव नहीं रहा भक्तों के प्रति उनका जो उस समय था, ऐसा थोड़ा है, वैसे सेम है। ठीक है, शाबाश, और समय भी हो गया है, ओके, कई लोग उठ के चले गए, ओके जी, ओके, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, नींद किसी को नहीं आई, बहुत ही अच्छा है ना, सब आप वाले हो जो भगवदगीता में दिया हुआ है ना, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, आप सब संयमी हो, थैंक यू, जय श्री प्रभुपाद की।